श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद में 26वें अध्याय के 15वें श्लोक में 16वां श्लोक है, 16वें श्लोक में हम नारद मुनि के द्वारा प्राचीन बरहित ध्रुव वंश के एक कर्मकांडी कर्मठ राजा को उपदेश एक उपाख्यान के द्वारा दिया जा रहा है, उसका श्रवण कर रहे हैं। इस चौथे स्कंद के 8 अध्याय जो अंत में है, इनमें पुरंजन प्राचीन बरहित का उद्धार और प्रचेताओं का उद्धार नारद के द्वारा है। ये पूरा 8 अध्याय है। नारद के उपदेश से प्राचीन बरहित और उसके 10 पुत्र प्रचेता, उनके उद्धार का वर्णन है। पुरंजन बहुत बड़ा, ये प्राचीन बरहित बहुत बड़ा धर्मात्मा, वेद विधान से यज्ञ करने वाला शक्तिशाली शासक राजा था, परंतु भक्ति से विहीन था। और नारद भक्ति का आचार्य है और ध्रुव महाराज का गुरु है, तो ध्रुव के वंश में इतना बड़ा शक्तिशाली, बहुत प्रसिद्ध वेद गया, वेद के मार्ग में ब्राह्मणों से निर्देशित यज्ञ करने वाले की अधोगति हो अथवा स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, उससे बचाने के लिए करुणा करके नारद उनके पास आए। और क्योंकि सीधा प्रचार करना इतना आसान नहीं है, जो वेदों के नाम में कर्म कांड में इतने लिप्त होते हैं वो समझते हैं यही धर्म है, तो उनको एक उपाख्यान बताया। उस उपाख्यान का नाम है पुरंजन उपाख्यान। पुर का अर्थ होता है नगर और रंजन का अर्थ होता है जो उसके अंदर मौज मनाए। नगर के अंदर कोई मौज मनाए उसको कहते हैं पुरंजन। जैसे भगवान ब्रज जन रंजन है, ये ब्रज में आए आनंद लेते हैं कृष्ण, और पुर में आनंद लेने की मूर्खता करता है जीवात्मा। तो ये शरीर है पुर, इस शरीर को बोलते हैं नव पुरा, नव द्वारे पुरे देही। ये नव दरवाजे वाला हमारा शरीर है, इसी को पुरी कहते हैं। ये है पुर, और इसमें रंजन करने के लिए, भोग के लिए आता है जीवात्मा। तो ये कथा है जीवात्मा की, जो भोग की भावना से, भगवान से अलग भोग की भावना से भौतिक जगत में शरीर धारण करके गुणों के प्रभाव में, प्रवाह में कैसे आता है और क्या करता है, ये वो कथा है हमारी। तो अगर आपने जैसे पहले से अगर सुनते आ रहे हैं, तो ये कहानी ऐसी है जिसके अंदर बात एक कही जा रही है, अर्थ दूसरा है। वो आने वाले श्लोक में सबका अर्थ बताया जाएगा। तो जीव आत्मा वो पुरंजन है जो भगवान से अलग भोग करने की भावना से भारतवर्ष में आता है, और उसको एक सुंदर कन्या दिखती है, बहुत सुंदर नारी है, 5 फन वाला सर्प उसकी रक्षा कर रहा है, 11 सैनिक उसके चारों ओर सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए खड़े हैं, और अनेक बड़ी सेना उसके पीछे चल रही है। पुरंजन के साथ भी उसका एक अज्ञात मित्र उसके साथ आता है जिसको पुरंजन जानता नहीं है, और उस नारी के साथ पुरंजन विवाह कर लेता है। ये कथा ऐसे शुरू होती है। तो जीवात्मा का अज्ञात मित्र कौन है? परमात्मा। वो जीवात्मा के साथ आता है। और ये सुंदर कन्या कौन है? बुद्धि। कौन है? और ये पांच फन वाला सर्प जो उसकी रक्षा करता है, ये कौन है? पांच प्राण। क्या? पांच प्राण। और ग्यारह बहुत बड़े सेनापति उसकी रक्षा में खड़े होते हैं, वो कौन है? एक मन, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, इन्हीं के द्वारा सारा काम करता है। और बहुत सारी पीछे सेना खड़ी है, वो कौन है? बहुत सारी इच्छाएं भोग की संसार में। फिर पुरंजन इस शरीर में प्रवेश करता है, किसके? बुद्धि के साथ तदात्म्य करके, और फिर घूमने जाता है आंख के द्वारे देखने के लिए, कान के द्वारे सुनने के लिए, जीभा के द्वारे चखने के लिए, नासिका के द्वारे सूंघने के लिए, ऐसे इन दरवाजों से बाहर जाता है, बहुत खुश रहता है। एक बार वो अपनी पत्नी को, पुरंजनी को, बुद्धि को बताए बगैर कहां चला गया? शिकार करने। और शिकार में भी पांच घोड़े लिखे हैं, रथ के पांच, ये रथ शरीर है, पांच घोड़े पांच इंद्रियां हैं, वो इनके द्वारा शिकार करने गया, मतलब इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इधर उधर भटक रहा था। अब जब वहां से थक हार के, उस दिन वो बहुत बड़ा निर्दयी होके पशुओं की हत्या कर रहा था, ऐसे आगे हम पढ़ते आ रहे हैं, वो थक हार के घर में आया, नहा धोके अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, बुद्धि को, और पूछ किससे रहा है? जो घर में सेवा करने वाली सेविकाएं हैं, दासियों से पूछ रहा है कि वो मेरी प्रिय पत्नी कहां है, दिखती नहीं है मुझे। कल के श्लोक में महाराज श्री ने हमको क्या बताया कि पत्नी अगर घर में, माता और पत्नी सुखदाई नहीं हो तो बगैर पहिए वाले रथ के ऊपर कौन चढ़ के जाएगा। तो वहां दो चीजें पुरंजन ने कही थी, और आज पुरंजन और केवल पत्नी के विषय में कह, कल माता को जोड़ के कहा था और आज पत्नी के विषय में भी बात कर रहा है। तो अब पुरंजन किससे बात कर रहा है? जीवात्मा बात कर रहा है। पुरंजन किससे बात कर रहा है? दासियों से बात कर रहा है, और पूछ किसके लिए रहा है? अपनी पत्नी के लिए। तो अब आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। क्वा वर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसनारणवे या माम उधरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे क्ववर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसनारणवे या मामुधरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे क्ववर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसन अरणवे या मामुदरेत प्रज्ञा दीपयन्ती पदे पदे। इस श्लोक में पुरंजन दासियों से पूछ रहा है, क्वा वर्तते ललना स ललना, वो मेरी प्यारी पत्नी, ललना का मतलब स्त्री, ललना स्त्री, का वर्तते कहां है, वो स्त्री कहां है? अरे भाई कौन सी स्त्री का पूछ रहे? तो कहते हैं मज्जन्तम, ये मज्जन्तम शब्द दामोदर अष्टकम में एक शब्द है, कहां क्या है? निमंजन्तम, निमंजन्तम वही मंजन्तम, मंजन्तम मतलब डूबे, डूबे हुए को, निमंजन्तम डूबा हुआ, किसमें डूबा हुआ? पानी में, भाई आदमी डूबता किस में, पानी में। तो कहा उदाहरण क्या देते हैं, व्यसन अरणवे, व्यसनों के मतलब दुखदायक, अरणवे समुद्र, जो दुख के समुद्र में डूबा हुआ जब मैं होता था। कौन सी स्त्री के बारे में पूछ रहा हूं, जो मुझे दुख के सागर में डूबते हुए को सहारा देती थी। मजंतम का मतलब डूबना और व्यसन अरण्य का मतलब दुखदायक समुद्र। और दामोदर अष्टक में भी ऐसे है क्या, ये तो पीछे कौन से दुख में क्या कह रहा है, वहां प्रार्थना में क्या है बोलो, ये शब्दों को उसका रस आस्वादन करो, वहां क्या है, संसार उसमें भी है कि मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, बड़ा दुखी हूं। श्लोक आने वाला है कार्तिक, बोलो ये तो निमंजनतम का, यहां ये सकारात्मक है कि ब्रज के भक्तों को आनंद के समुद्र में मगन करते थे, ये अर्थ है सकारात्मक। और फिर ये है नकारात्मक कि मैं वैष्णों के सागर में डूबता था तब मुझे वहां से निकालती थी। लेकिन आगे दामोदर अष्टक में है कि मैं इस संसार के दुख में डूब रहा हूं, भगवान दुख जाला दिमगनम, दुख जाला आप दिमग्नम, इस दुख के सागर में मैं डूब रहा हूं। वहां वहां भगवान को कहता है बचाओ और यहां स्त्री को कहता है बचाओ। या मैं सिर्फ उदाहरण ये देना चाहता हूं कि साधु की दृष्टि और जीवात्मा बद्ध की दृष्टि ये है, वहां कहता है हे दामोदर मुझे सागर से निकालो, और ये कहता है वो स्त्री मुझे सागर से निकालती थी। अच्छा, वो सागर से आपको निकालती थी, कैसे निकालती थी, तो कहते निकालती थी या माम उधरते, मुझे निकालती थी कैसे, वो कैसी थी, प्रज्ञाम और दीपयंती पदे पदे। प्रज्ञाम का मतलब मुझे बोध देती थी, मुझे अच्छी, वैसे प्रज्ञा कहते हैं अच्छी बुद्धि को, और दीपयंते कहते हैं प्रबोध देना, एनलाइटेंड, पदे पदे हर पग के ऊपर, एक एक कदम के ऊपर जब मैं मुश्किल में पड़ता था वो मुझे अच्छी मंत्रणा देती थी, अच्छी बोध देती थी, मेरा बड़ा हर मुश्किल से मुझे बाहर निकालती थी। तो इन शब्दों का अर्थ एक बार प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा सुना, क्वा कहां वर्तते इस समय है सा वो ललना स्त्री मंजंतम डूबते हुए व्यसन अरणवे संकट के सागर में, या जो माम मुझको उधरते उबारती थी, उबारती है, मर नहीं गई अभी तक, प्रज्ञाम सद्बुद्धि दीपयंती जागृत करके, जागृत करके एनलाइटेंड, दीपयंती मुझे प्रकाशित करती थी, अंधकार से निकालती थी, पदे पदे प्रत्येक पग पर। अब इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ, कृपया मतलब उन दासियों से पूछ रहे हैं, मुझे उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुन्द्र में डूबने से उबारती है, वो मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती है। पत्नी शब्द का अर्थ है पात्यते इति पत्नी, जो पतन से बचाए, व्यक्ति को जो पतन से बचाए उसको कहते हैं पत्नी। और पति किसको कहते हैं? जो पालन पोषण करे, भरण पोषण करे, वो पति। पति का काम है भरण पोषण करना और पत्नी का काम है पतन से उसको बचाना। तो यहां श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में पहले लिखते हैं, अच्छी पत्नी तथा सद्बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। अच्छी पत्नी तथा सद्बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता, यह हुआ सकारात्मक बात। और दुर्बुद्धि और कुटिल पत्नी बहुत बड़ी घातक होती है। इसका दूसरा अर्थ ऐसे निकालते जाएंगे तो पता समझ में आ जाएगा। कल पत्नी के लिए क्या शब्द लिखा था? माता और पत्नी के लिए क्या शब्द था? पति देवता। पति को जो देवता मानती है, क्या पति को क्या अलमारी में उन्हें बड़े सिंहासन बनाए के उसकी आरती करेगी? देवता का मतलब क्या? पति देवता का, पति देवता का मतलब जैसे हमने कहा है कृष्ण एक ही हमारे आराध्य देव हैं, हमको उसी को समर्पण करना है, उसी की शरणागति है और कहीं नहीं देखना है। ये एक कृष्ण भक्त का निष्ठा होती है। ऐसे पत्नी की यह निष्ठा है कि मेरे जीवन में ये पति ही मेरे लिए सर्वस्व है, इसी के शरण में मेरी सुरक्षा है और कहीं इधर उधर नहीं देखना, उसको कहते हैं पति। कौन सी पत्नी? पति देवता, जो पति को देवता मानती है, मतलब एक पति के ऊपर आश्रित हो, वो हुई पति देवता वाली पत्नी। तो ये बहुत बड़ा संस्कार और संस्कृति का वर्णन है, असल में अच्छे संस्कारों का वर्णन है। कल तीन बातें महाराज ने बताई थी, किसी को याद है क्या? एक मैं बताऊं, लता को सहारा चाहिए, दूसरा वनिता को सहारा चाहिए पत्नी को, तीसरा क्या था? हाँ, कवि को कविता का सहारा। एक को याद है कम से कम, आप सब भूल गए। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो कुबुद्धि पतन का कारण होती है और कुलटा पत्नी पति के लिए दुख और पतन का कारण होती है। एक राजा की थी रानी, राजा जब ऑफिस चला गया अपने राज महल सभा में, तो उसके मन में आया कि सामने जो बहुत बड़ा जौहरी का जो हीरे मोती के बेचने वाले का घर है, वो बहुत सुंदर आदमी है, उसमें उसकी काम भावना हो गई। तो भेजा अपनी दासी को कि जाओ उसको बोलो कि महारानी कहती है आपसे कुछ हीरे मोती खरीदने हैं, आप आ जाइए। तो बेचारा बिजनेस धंधे वाला था, आ गया। आज हो गया तो हीरे मोती तो देख नहीं रही थी, उस आदमी को देख रही थी और प्रेम के मोह की बातें कर रही थी काम की। इतनी देर में राजा वापस आ गया अचानक, जल्दी आना तो था नहीं राजा को, किसी कारण से आ गया राजा। जो अंदर आ गया तो अब उसको छुपाए कहां? तो देखो, अगर लेना था तो राजा को बोलती कि मुझे आभूषण लेके दो, अपनी ओर से किसी को घर में तो नहीं बुलाती ना। तो लगा उसको डर, सामान तो पलंग के नीचे घुसवा दिया, इसको कहां ले छुपाए। तो उस जमाने में जो, अब अंग्रेजी में भाषा में कहना पड़े, पहले जमाने में परिवार जो होते थे ना, वो अटैच होते थे। अटैच का मतलब आपस में बहुत संगठित। और जो टॉयलेट होते थे वो बाहर होते थे, वो बाहर होते थे। अब टॉयलेट अटैच है और परिवार बाहर है। बाबा भी बाहर, अम्मा भी बाहर, बाकी सब टॉयलेट अंदर। अटैच और कुछ हो गया और डिटैच परिवार हो गया। सो उनके बाहर की तरफ पुराने जमाने का टॉयलेट था जिसमें ऊपर बड़ा खड्डा होता था, नीचे बाहर से सफाई करने वाले सफा कर जाते। बोला इसका भी सफा करके गई, उसके अंदर छुप जाओ, इधर तो जाएगा नहीं राजा। उसका छुप गया बेचारा। राजा आया जल्दी इसलिए था उसका पेट खराब था, सीधा अंदर गया और एक बार भी नहीं तीन बार गया। फिर राजा नहा धो के अपने ऑफिस गया। अब ये बेचारा बाहर निकला, उसका हाल आप समझ सकते कैसा हुआ है। जो भी है नहा धो के वहां से अपना सामान उठा गया। दूसरे दिन रानी ने कहा आओ, बोला नहीं बेचना मेरे को। ये कहानी क्या बताई आपको, ये दुर्बुद्धि जो होती है आत्मा को कहती है आओ आओ तेरे को दुनिया में बड़ा मौज कराएंगे। तो आत्मा भी आ जाती है कि कहीं ना कहीं यहां कुछ मेरा सुख मिलेगा। लेकिन जब वो टॉयलेट के नीचे बिठाया ना, तब वो समझ गया जीवात्मा मुझे ये गर्भ में नहीं जाना है, दोबारा सर नीचे करके मलमूत्र के थैले के बीच में नहीं जाना, नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। ये असल में हमारी कथा है कि हम सभी वैसे उल्टे लटके होते हैं। ये तो तीसरे स्कंद भागवत में जीव की गति के वर्णन में हमारा हाल सारा बताया हुआ है। अब हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, हम बहुत बड़े धनी हैं, कहां से आए हो ये तो पता करो, कौन से रास्ते दुनिया में आए हो, वो तो मलमूत्र के भांड से निकले हो, ये बात भूल क्यों गए। ये बुद्धि कहती, इस दुर्बुद्धि इसको कहते। लेकिन अच्छी बुद्धि अगर हो तो यहां प्रभुपाद जी अच्छी बुद्धि और अच्छी पत्नी, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसकी सुबुद्धि हो, जिसके सुबुद्धि होती है वो ठीक से विचार विमर्श कर सकता है और अपने आप को संकटों से बचा सकता है। इस संसार में पग पग पर संकट है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है, पदे पदम पदम विपदम, एक एक कदम कदम के ऊपर खतरा है। कोई भरोसा नहीं है इस दुनिया में कि एक कदम रखा दूसरा रखेंगे कि रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, एक सांस लिया दूसरा सांस आएगा कि नहीं आएगा, ये कोई भरोसा नहीं है। ऐसे भगवान के शरणागति अगर बुद्धि नहीं लेती है, भाई बुद्धि में किसको बिठाना है। देखो आप एक थोड़ा ध्यान दीजिए, इस बुद्धि ने किसको बिठाया, जीव आत्मा को अंदर बिठाया। और श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं, किसको बुद्धि में बिठाओ, कृष्ण कहते हैं मुझको बुद्धि में बिठाओ। मई एव मन आदर्श मई बुद्धिम निवेश है, मई बुद्धिम निवेश है, मुझे आपकी बुद्धि मेरा निवास स्थान बनाओ, मेरे आपकी बुद्धि मेरा निवास स्थान बनाओ। इसका मतलब हमारी बुद्धि में कृष्ण को बैठना चाहिए। कृष्ण हमारी बुद्धि में बैठे तो वो अच्छे सारथी हमारे को इस भवसागर से पार ले जा सकते हैं। ये जीवात्मा बेचारा बुद्धि में बैठ के भोग करने की भावना से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता है। अच्छी बुद्धि हो, अच्छी बुद्धि हो अगर हमारे पास तो संकट से बचा सकती है। अच्छा, ये बुद्धि तो भगवान सबको देते हैं लेकिन बुद्धि योग सबको नहीं देते। बुद्धि योग भगवान किसको देते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। तो बुद्धि सबको नहीं दे, बुद्धि योग सबको नहीं, बुद्धि सबको दी है। कौन सी वाली, जो खाने पीना कहां है ढूंढ ले, भोग कहां करना है वो स्थान ढूंढ ले, आहार निद्रा भय मैथुनी की बुद्धि सबको है, पशु से लेके मानव तक। लेकिन बुद्धि योग केवल भक्तों के लिए, सबके लिए नहीं है। ये भगवान ने नियम बना रखा है। तो असल में अच्छी बुद्धि वो है जो भगवान के शरणागत बुद्धि हो, वो है अच्छी बुद्धि, वो हमको सही मार्ग में ले जा सकती है। जो बुद्धि संसार के भोग के पीछे भाग रही है वो हमको कभी सदमार्ग पे नहीं ले जा सकती। तो अच्छी बुद्धि से पग पग के ऊपर विपत्ति है, साक्षात पदम पदम विपदम नतेशाम। ये भौतिक संसार वास्तव में बुद्धिमान लोग, वहां से ये बहुत बड़ी बात लिखी है प्रभुपाद ने, ये भौतिक संसार वास्तव में बुद्धिमान लोगों या भक्तों के रहने का स्थान नहीं है, क्योंकि पग पग पर संकट है। ये संसार बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब जो थोड़ा सा जिनको भगवान ने बुद्धि दी है, और भक्तों के रहने का स्थान नहीं है। क्या विचार है आपको? आप यहां से परे अभी थक गए हैं कि और यहां रहने की इच्छा है? प्रभुपाद जी कहते हैं ये रहने के लिए, अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है। अगर हम यहां रहना चाहते हैं तो हम अच्छे लोग नहीं है या भक्त नहीं है। इसका अर्थ सीधा ये निकलता है, अगर हम समझते हैं कि यहां अभी हमारा काम चल रहा है, आगे चल के हम बहुत सुखी हो जाएंगे और हम कोई कष्ट परेशानी नहीं है, इसका मतलब हम न तो बुद्धिमान है और न भक्त है। तो भक्त और बुद्धिमान के लिए रहने की जगह ये दुनिया है ही नहीं। ये ऐसा कथन है प्रभुपाद जी का जो चिंतन का विषय है। जब तक हम अपने आप इस दुनिया के संकटों से का अनुभव करके नहीं हमको यहां आना है ये निर्णय नहीं करेंगे, तब तक उत्साह के साथ भगवत प्राप्ति की लालसा पैदा ही नहीं होगी। भगवत धाम जाने के लिए उत्साहित होना चाहिए, उत्साह बहुत होना चाहिए। मुझे जाना है भगवान के पास, मुझे जाना है भगवान के पास। वो कब? भाई आदमी जेल से कहता है मुझे बाहर निकलना है, मुझे घर जाना है, ऐसे ही कहता है ना जेल में, क्योंकि जेल कोई अच्छी जगह नहीं है, भले आदमी के रहने का स्थान नहीं है। तो वहां जब कहे मुझे निकलना है, जाना है, मुझे छोड़ो घर जाऊंगा, ऐसे जब तक तड़पता नहीं है तब तक भगवत धाम जाना आसान नहीं है। हम जेल में हैं और हम बहुत यहां दुखी हैं, ये बात समझ में आ जाए तो आदमी को उत्साह से अपने घर जाने की इच्छा हो। तो भले आदमी के लिए, भक्त के लिए ये दुनिया रहने का स्थान नहीं है, तो भक्त कैसे इस दुनिया में रहते हैं? फिर ये प्रश्न उठता है। भक्तों को यहां रहना है तो उसके लिए एक ही साधन है, भक्तों के संग में रहे। भक्तों के संग में रहे, भगवान के धाम में रहे और भगवान की कथा का परस्पर सुनता और सुनाता रहे, तो भक्त यहां रह सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा भक्त के यहां रहने का उद्देश्य क्या है? भगवान के अन्य मूर्ख संसार में भोग में लिप्त लोगों को भगवान की ओर आकर्षित करने के लिए भक्त इस दुनिया में रहता है, भोग के लिए नहीं रहता। वो जानता है कि रहने की जगह नहीं है, लेकिन यहां बेचारे दुखी हैं, इनको यहां से कैसे निकाला जाए, इसलिए आता है। जैसे कहीं आग लगी हो, लोग अंदर जल रहे हैं, तो बाहर बहुत से लोग होते हैं, वो तो उनके अंदर ही आग लगी होती है, वो कहते हैं हमारी आग जैसी इनकी है, इनको जलने दो, हम भी जल रहे हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा उद्धार होता है, कूद पड़ता है उसमें, उस आग में जाता है और वो जो जलते हुए लोगों को निकाल के बाहर लाता है। तो भक्त का तो यहां ऐसा काम है कि वो इस दुनिया में जलते हुए लोगों को, डूबते हुए लोगों को निकालने के लिए यहां आता है। यहां भाई कौन आदमी आग लगी है वहां कोई भोगने जाएगा, कुछ उधर घूमने उस घर में कोई चोरी करने जाएगा क्या जहां आग लगी है? हाँ, किसी मिलने जाएगा? नहीं, किसी को निकालना है तो आना चाहिए, नहीं तो जाने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे इस संसार में अगर हम प्रचार कर सकते हैं तो हमको रहने का अधिकार है, अगर प्रचार नहीं कर सकते तो हमारा आचार डाला हुआ है। या आचार समझते कैसे? वो डब्बे में डालते तेल में डूबा रहता है हमेशा। प्रचार ही सार है, इसलिए प्रभुपाद का प्रचार ही सार है। जहां देखो कृष्ण उपदेश करो, जलते हुए लोगों को बचाओ, पहले अपनी जलन को समाप्त करो और फिर दूसरों को बचाओ, जन्म सार्थक करी पर कर पर उपकार, ये हमारे यहां रहने का उद्देश्य है। महाप्रभु का सीधा आदेश है, जन्म सार्थक कर, कर परोपकार। ये हमारे जीने का, अगर ये कर सकते हैं तो यहां रहो, ये नहीं कर सकते हैं तो फिर यहां हम समझते हैं कि हम और कुछ सुख आगे भोग लेंगे, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। कल महाराज उदाहरण क्या दे रहे थे, इस दुनिया में हम भागते हैं आगे, लेकिन पानी जैसे मृग तृष्णा होती है उतना ही दूर भागता है। तो इस दुनिया का सुख उतना ही एक हाथ हमसे हमेशा दूर रहता है, इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद हो। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे, याद है किसी को, गधे के ऊपर आदमी जब चढ़ के जाता था पुराने जमाने में, तो गधे को तेज चलाने के लिए क्या करता था, लकड़ी के ऊपर आगे गाजर बांध देता था, तो गाजर आधा फुट गधे के आगे आंख के सामने ऐसे लुटा आई गधा, तो अभी गाजर खाऊंगा और तेज भागता था, लेकिन वो लकड़ी उतनी दूर रहती थी। और जब मंजिल पे पहुंचता था तो आदमी उतर के गाजर तो खुद खाता था और बहुत अच्छी लाठी गधे को मारता था। तो ये हमारे को संसार का सुख यहां आखिर तक मिलना नहीं है, आखिर में मृत्यु वाला एक डंडा मिलना है, चलो कुछ मिलना नहीं है। समझ रहे हैं कि कितना सुख है बारी बिंदु, बारी बिंदु का मतलब रेत के अंदर एक बूंद पानी की गिरे, इतना सुख इस संसार का है। जबकि भगवत भक्ति में आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वहां तो आनंद का सागर है और यहां एक बूंद जितना सुख है, उसके लिए संसार में आदमी क्यों फंसा हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये संसार बहुत दुख की जगह है, यहां बुद्धिमान व्यक्ति और भक्तों को रहने की जगह नहीं है। भक्त के लिए तो वैकुंठ ही असली स्थान है, जहां ना चिंता है और ना संकट है। अब भक्त को कहां रहना चाहिए, वैकुंठ में। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमने ये हमारे मंदिर वैकुंठ का वातावरण बनाया है, यहां भगवान स्वयं रहते हैं। भगवान का मंदिर क्या, भगवान स्वयं रहते हैं, तो जो भक्त यहां रहते हैं वो वैकुंठ में रहते हैं। असल में ये चार प्रकार की मुक्ति हमारे इस मंदिर में आपको दिखने में आती है। कौन सी चार प्रकार की मुक्ति है, पहली का नाम बोले, पांचवी नहीं बोलता हूं उसको छोड़ के, सायुजिया बोल के छोड़ के बोलो, हां सामीप्य। ये पुजारी है रोज भगवान के अंदर समीप कितना रहते हैं, हाथ लगाते हैं, पूजा करते हैं, सामीप्य मुक्ति पुजारियों क्यों है। अच्छा जी बोलिए दूसरी, सालों के हम हैं जो यहीं भगवान के परिसर में रह रहे हैं, भगवान के मंदिर उसी लोक में रह रहे हैं, वहीं प्रसाद खा रहे हैं। तीसरी सारिष्टि में क्या होता है, भगवान जैसा वैभव होता है। हाँ ये हमारे लाइफ मेंबर वाले सारे हैं, इनकी ये मुक्ति है, बड़ा उनके पास सब चीजें होती है, सब सामान सार सताज बड़ा उनकी ये स्पेशल मुक्ति है, ये मुक्ति है। भगवान के धाम में रह रहे हैं लेकिन उनको वैभव है सारा, बड़ी गाड़ी है, हम फोन है, चार पांच लोग, बड़े लोगों से मिलना है, लोग उसको आके आते ही हाथ जोड़ते हैं, कहां है महाराज जी, कहां है स्वामी जी, कहां। तो वो बड़ी मुक्ति है, भगवान की सेवा में है तो इतनी बड़ी मुक्ति है। बाकी कौन सी रह गई, भगवान के समान शक्तिशाली वो सारूप्य, वो तो जब ड्रामा करते हैं कोई तब मिलती है। जो ड्रामा करते हैं तो मिलती है वो भी। तो ये सब ये धाम में रहे, वैकुंठ में ही सब रह रहे हैं, ये सब वैकुंठ में रह रहे हैं। असल में वैकुंठ का वातावरण प्रभुपाद ने बनाया, चिंता रहित संस्था बनाई है। असल में भाई चिंता, ये ब्रह्मचारियों से पूछे कोई चिंता है, ये लाल कपड़े वालों से पूछे कोई चिंता है, यही चिंता है कि सुबह 4 बजे उठना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, मंदिर में जाके खाओगे, कीर्तन करना है, कीर्तन के बाद जप करना है, जप के बाद कथा सुन के बस इस दरवाजे निकल के उधर बैठना है, प्लेट के ऊपर प्रसाद तैयार है, और प्रसाद तैयार है और खाना है और फिर चल के बाहर जाना है। इनको ये भी पता नहीं है कि दाल 100 रुपये से ज्यादा किलो हुई, आपको मालूम है। यह ग्रस्तों से पूछो हाल क्या है उनका, कोई परवाह नहीं है इनको, कोई चिंता नहीं है, कहां से आ रहा है, कौन खिला रहा है मालूम नहीं है, दो सब्जी बनी हुई मिलती है, चावल का गोवर्धन पहाड़ बना हुआ मिलता है। ये तो रोज अन्नकूट इनकी हो रही है, कोई चिंता नहीं है इनको, ये तो वैकुंठ का वातावरण। कैसे कितनी दुनिया में परेशानियां, लेकिन भक्त बेफिक्र है कि नहीं है, कुछ भी नहीं होता था। अभी तो भक्तों के पास कुछ है, पहले कुछ नहीं होता था तब भी नाचते थे कूदते थे खुश रहते थे, क्यों, देखो बाहर की संसार की चीजों में सुख नहीं है, ये जो भक्ति है ना ये सुख देने वाली है, सुख देने वाली भक्ति है। बाहर की चीजें नहीं, राजा महाराजा राज छोड़ के क्यों साधु संतों का संग करते थे, क्यों एकांत में भगवान का भजन करने का संकल्प लेते थे, क्यों? राज में होती, कुलशेखर महाराज कहते हैं ये राजपाठ में सुख नहीं है, भगवान के चरणों के शरण में सुख है, ये असली सुख है। तो भक्त क्यों सुखी है? क्योंकि भगवान की भक्ति करते हैं, नाम सुमरण करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, तो बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इससे ये कोई मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये शुद्ध पवित्र हो गए, नहीं आए। बाहर निकलेंगे तो अभी भी इसको माया पकड़ लेगी, ऐसे बाहर खड़ी है। हमने एक बार आपको उदाहरण दिया था, आपके पास कोई फूटा हुआ मटके में दो तीन सोराख है और आप चाहते हो कि ये भरा रहे, तो क्या करोगे? नदी में लेके जाओ, भर के बाहर आओगे तो पानी बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा? मटके में क्या है? बहुत बहुत छेद पड़े हैं। अब जाओ जमुना से भर के बाहर निकालो, फिर खाली हो गया, फिर निकालो खाली हो गया। अब आप कहो कि हमारा मटका भरा रहे तो क्या करना पड़ेगा? पानी में ही छोड़ दो, भरा पड़ा रहेगा, पानी कहां से बह के जाएगा? तो असल में हम हैं फूटे मटके, पड़े हैं मंदिर में तो भरे हैं, बाहर गए तो बह जाएगा। ये सच्ची बात है। लोग हमेशा कहते हैं कथा में आते हैं तो अच्छा लगता है, समझते हैं भगवान का भजन, बाहर जाते हैं सब बह जाता है। इसलिए जो रहते हैं यहां वो तो भले फूटे मटके फिर भी भरे, कि खाली हो नहीं सकते, कि वो पड़े ही अंदर है तो कहां जाएंगे। तो यहां माया को अधिकार नहीं है, ये माया का क्षेत्र नहीं है, ये वैकुंठ है भक्तों का। भक्त कीर्तन करते हैं प्रभुपाद के, प्रभुपाद जो कहते हैं ये वैकुंठ से आए हैं, ये वैकुंठ इस धरती पे बनाने के लिए भक्त आए हैं। तो यहां भक्तों का रहने का स्थान वैकुंठ है, जहां रहे वैकुंठ की तरह रहे, धरती पे रहे तो ही वैकुंठ का वातावरण बना के रहे, इसका भाव ये है। ये कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना ऐसे संग देने के लिए है जो इस दुनिया में वैकुंठ का अनुभव कर ले तब बोले हमें वापस उधर ही जाना है, वापस दुनिया में नहीं जाना है, ये निर्णय कर ले। सद्बुद्धि का अर्थ है कृष्ण भक्त होना, और प्रभुपाद जी सीधा कहते हैं सद्बुद्धि कौन सी है? जिसने कृष्ण का वर्ण किया। ये भीष्म पितामह की भाषा एक महाजन की है, इति मति उपकल्पिता वितर्षणा। ये जो मेरी मति है, बुद्धि को मति तब कहते हैं जब उसकी मत भगवान को वर्ण करने की हो जाए। बुद्धि मति कब बनती है? जब वो सती होती है, सती मति, सती मति कहते हैं, सती मति वासुदेव, भगवान वासुदेव को वर्ण करने वाली बुद्धि को कहते हैं सती मति। और भीष्म पितामह कहते हैं ये मेरी मति जो है, मेरी बुद्धि है, सद्बुद्धि है, ये वितृष्णा, इसमें कोई संसार की तृष्णा नहीं है, काम वासना नहीं है, भोग की इच्छा नहीं है, कृष्ण इसको आप स्वीकार कीजिए। इसके तात्पर्य में कुछ आचार्यों ने लिखा है कि जैसे लड़की किसी की हो और उसके विवाह के लिए कोई लड़का ढूंढे, ऐसे भीष्म पितामह अपनी बुद्धि रूपी कन्या को सामने खड़े हुए कृष्ण को तमाल वर्णम, ये बहुत सुंदर जो सांवला खड़ा है उसको दर्शन करा रहे हैं और कहें कि इसको आपको वर्ण करना है। तो ये कहते हैं वो बुद्धि जो कृष्ण परायण हो वो असल में सद्बुद्धि है। ये भक्ति वाली बुद्धि जिसने कृष्ण का वर्ण किया है, सती मति है, मति वो जो सती है, वो उसी को सद्बुद्धि कहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कृष्ण ये भजे से बड़ा चातुर, जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता उसे बुद्धिमान या चतुर नहीं कहा जा सकता। जो चतुर्भुज का हो गया वो चतुर हो गया, भाई चार भुज का जो हो गया वो चतुर हो गया। तो ये चतुर की परिभाषा चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है महाचैतन्य चरितामृत में, जो कृष्ण भजे, और कृष्ण भजे का मतलब क्या है? कृष्ण से भाग जाए कृष्ण भजे का मतलब कृष्ण की सेवा करे, भजन का अर्थ होता है सेवा, भजन का अर्थ है सेवा, जो कृष्ण की सेवा करे। और ये हरे कृष्ण मंत्र क्यों जपते हैं? कृष्ण की सेवा की प्राप्ति के लिए। लेकिन कृष्ण की सेवा कौन करता है? सभी करते हैं, सारा जगत कृष्ण की सेवा करता है। और आध्यात्मिक जगत में राधा रानी, नंद बाबा, यशोदा से लेकर बलराम से लेकर सभी कृष्ण की सेवा करते हैं। और वही सेवा हमको सिखा सकते हैं, वही हमको सेवा सिखा सकते हैं। असल में राधा के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु आके हमको कृष्ण भजे सिखाया, कृष्ण का भजन कैसे करना सिखाया, करना चाहिए सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने राधा भाव में आए, क्योंकि राधा ही सेवा करती है। जो सेवा कृष्ण को स्वीकार है वो राधा की सेवा स्वीकार है। तो महाप्रभु इस भाव में आकर हमको भजन सिखाया, तभी उन्होंने ये लिखा है कृष्ण भजे सही चतुर। यहां हम देखते हैं कि राजा पुरंजन अपनी सुभार्या को खोज रहा है, जो उसे इस संसार में मिलने वाली संकटमय परिस्थितियों से बचाती रहती थी। जैसा पहले कहा चुका जा चुका है, असली पत्नी धर्म पत्नी होती है, जिसे धार्मिक नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया है। धर्म पत्नी से उत्पन्न संतान पिता के संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं, किंतु अविवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। यह सामाजिक बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि पत्नी धर्म पत्नी कहते हैं, पत्नी को धर्म पत्नी, पति को धर्म पति कहते हैं कि नहीं? हाँ, वो कर्म पति, कर्म करेगा कमाएगा तब धर्म पत्नी का पालन करेगा। कर्म पति और धर्म पत्नी, तो धर्म पत्नी किसको कहते हैं? जिसका धार्मिक विधि विधान से विवाह संस्कार हुआ वो हुई धर्म पत्नी। और जो आजकल विवाह विवाह विधान वाला हो ही नहीं रहा है, प्रभुपाद जी कहते ये तो नियम है, सरकार का कानून भी है कि विवाहित पत्नी के बच्चों को पिता का संपत्ति का भाग मिलेगा, लेकिन जो अविवाहित है उसके बच्चों को नहीं मिलेगा। ये आश्चर्य नहीं है? हरे कृष्ण। प्रभुपाद का ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ एक अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन इसका उत्तराधिकार शिशुओं को मिला, पुत्रों को नहीं मिला। उन्होंने केस किया था, नहीं मिला, शिशुओं को मिला। क्यों? प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम का संबंध स्थापित किया और उसके द्वारा ये संतान सब पैदा किए जो शिष्य हैं, तो इनको उत्तराधिकार भक्ति का सारा मिला, लेकिन परिवार वालों को नहीं मिला, क्योंकि वो प्रभुपाद के इस कार्य में सहयोगी नहीं हुए। किसको मिलेगा उत्तराधिकार? बहुत से गुरुजन हैं, अपना शिशु को ही सब कुछ देके जाते हैं, अपने बच्चों को। गुरु नानक साहब ने अपने बेटे को तो नहीं दिया पीछे का गद्दी, एक और सेवाधारी को दे दिया था। तो यह जो भगवान की सेवा में लगे हुए आपकी सहायता करते हैं वही उत्तराधिकारी है। सो पत्नी जो धर्म पत्नी है, अच्छा कल पत्नी की परिभाषा में क्या कहा था? पत्नी हमारे जिस गृहस्थ आश्रम में भगवान की सेवा करने के लिए सहयोगी है। पाश्चात्य देशों के विवाह और वैदिक संस्कृति के विवाह में यही मुख्य अंतर है। पाश्चात्य विवाह भोग प्रदान है और वैदिक विवाह संस्कार और परंपराओं की सुरक्षा के लिए है। ये भगवत गीता में, ये भगवत गीता का सिद्धांत है कि परंपराओं के नियम चलेंगे, अगर कुल परिवार चलेगा तो वैदिक विवाह कुल परंपराओं की रक्षा के लिए है और पाश्चात्य का विवाह भोग के लिए। इसलिए पाश्चात्य का विवाह टूट जाता है, क्योंकि भोग खत्म हुआ, विवाह टूट गया, लेकिन वैदिक विवाह टूटता ही नहीं है। कल महाराज कह रहे थे तलाक शब्द हमारे कोश में ही नहीं है, नहीं भोग का उद्देश्य ही नहीं है, उद्देश्य है कुल परंपराओं की रक्षा। तो 70% से ज्यादा पाश्चात्य विवाह टूटते हैं, वो धर्म पत्नी वाला बात वहां है नहीं, वहां भोग पत्नी वाला भोग पति वाला ये एक वैसा व्यवहार है जिसका कोई बदल गया तो दूसरे दिन बदल गया, पति बदलते रहते हैं रोज, पत्नियां बदलते रहती हैं। तो यहां ऐसा अभी तक भारत में कोई 2-4% ऐसी बुराई आई है, ज्यादा नहीं आई है, पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा आई है, गांव गरीब लोगों में, गांव के लोगों में अभी तक ऐसी बुराई नहीं आई है कि भाई छोड़ के चला जाना परिवार को, ये संभव नहीं है। पतिव्रता पत्नी वो है जो विवाह के पूर्व किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं रखती। पूर्व लिखा है यहां, देखने दो भाई, हाँ, तो इसको कहते हैं धर्म पत्नी या पतिव्रता जिसका कहीं किसी से कोई संबंध नहीं है। पतिव्रता पत्नी वो है यदि एक बार स्त्री को अपनी युवा अवस्था में सभी प्रकार के पुरुषों से मिलने जुलने दिया जाए तो उसका पतिव्रता रह पाना कठिन हो जाता है। सामान्यतः वो पतिव्रता नहीं रह सकती। जब मक्खन को आग के निकट लाया जाता है तो वे पिघल जाता है। स्त्री अग्नि के समान है और पुरुष मक्खन के समान, किंतु यदि मनुष्य को पतिव्रता पत्नी मिल जाए तो धार्मिक विवाह संस्कार के द्वारा स्वीकृत की गई है तो वो संकटमय परिस्थितियों में अत्यधिक सहायक हो सकती है। वास्तव में ऐसी पत्नी समस्त सत्बुद्धि का उद्गम है। ऐसी पत्नी होने से यदि परिवार भगवत भक्ति करता है तो वो घर वास्तव में गृहस्थ आश्रम बन जाता है। अब प्रभुपाद जी ने आधुनिक युग के नौजवान बच्चियों का स्वतंत्रता से रहना और हर एक से मिलने जुलने का जो दृश्य देखा उसके ऊपर ये टिप्पणी की है कि ऐसी अवस्था में वो युवतियां पतिव्रता भाव को धारण करके रख नहीं सकती, और उदाहरण आग और मक्खन का दे दिया। ये आग के सामने मक्खन नहीं रख सकता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक संकट का विषय है असल में देखा जाए तो। इसलिए कहीं प्रभुपाद जी ने एक लिखा था कि पुराने जमाने में छोटी उम्र में ही बच्चियों का सगाई कर दी जाती थी, तो बच्ची को मालूम है कि मेरा विवाह इससे होना, और लड़के को मालूम होता है मेरे इससे पत्नी होनी है, तो वो मानसिक रूप से इधर उधर भटकता नहीं था। लेकिन आधुनिक लोगों ने उसको ऐसा उल्टा उल्टा कर दिया कि अब तो विवाह करने का समय आता है, अपनी च्वाइस से सब विवाह करते हैं, बड़े बुजुर्गों का कोई उसमें हाथ रह नहीं जाता है, तो ये सारी समस्याएं हो रही हैं। तो पर ऐसी पत्नी मिल जाए कोई धार्मिक दृष्टि से तो पति की रक्षा करती है। वो भोजन में माँ के समान प्रेम से खिलाती है, भोग में रंभा के समान है, और बात जब सहायता चाहिए तो वो मंत्री के समान है। ये पत्नी के चार प्रकार के व्यवहार पति के साथ बताए हैं, तीन हमने बताए हैं, चौथा आप जाके ढूंढ लेना। हरे कृष्णा। भोजन कराए तो पति मात्रवत भोजनेशु रंभा भोगेशु मंत्रवत, मंत्रणा करने में मंत्री के समान है, अच्छी सहायता देने वाली है। चौथा क्या करती है वो मुझे याद नहीं है। हरे कृष्णा। सो आज के प्रभुपाद जी ने तो पुरंजन की पत्नी की कथा बताते हुए कहा कि अच्छी पत्नी जीवन में मिल जाए तो गृहस्थ आश्रम को धारण करना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्रह्मचारी बन के यहीं आके रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ जी, वैसे अच्छी अच्छा पति अच्छी पत्नी हम हरेक चाहता है, पति ऐसा मिले हमेशा हमारा पालन पोषण करे, पत्नी ऐसी बोलते है पत्नी ऐसी मिले पतिव्रता हो, लेकिन ऐसे होते नहीं है दुनिया में। ये मिलना बहुत मुश्किल है, कोई भाग्य से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मिल जाए तो। हरे कृष्ण, ये सब भाग रहे हैं, इनको मिल गई है। अरे भाई क्या शाम को दुकान चालू है क्या?
दुकान चालू है।
हाँ, क्या लिखा है दुकान पे?